नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ नीरव हिंगू विद अ सीरीज ऑफ क्रिया योग। और क्रिया योग की इस अंतिम एपिसोड में, इस सीरीज में, हम बात करेंगे पांच विशेष क्रियाओं की। क्योंकि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि क्रिया योग को मूल रूप से 7 या 8 भागों में, कई कई लोगों ने 16 भागों में उसको बांटा गया है या उसको डिवाइड किया गया है, लेकिन आज के इस अंतिम एपिसोड में क्रिया योग में मैं बात करूंगा क्रियाओं की। जैसे पहली क्रिया जो मैंने बताई थी 5-6 एपिसोड को विभक्त करते हुए, प्रथम क्रिया में क्रिया योग में आता है गुरु प्रणाम, खेचरी मुद्रा, नाभि मुद्रा या नाभि क्रिया, प्राणायाम, योनि मुद्रा, महामुद्रा और पुनः गुरु प्रणाम। और आने वाले और इसके जो 5 स्तर हैं या 5 प्रकार हैं उसको आज मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। जैसे ये पहला जो मैंने क्रम बताया आपको, गुरु प्रणाम, खेचरी, नाभि आदि, उसको प्रथम क्रिया मानी जाती है। उसी प्रकार से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस प्रकार से 6 क्रिया मानी गई है, यानी 6 भागों में उसको विभक्त किया गया है। और ये मेरे द्वारा कोई बताई गई वस्तु नहीं है, ये श्री महेश्वरी प्रसाद दुबे, जो एक सच्चे क्रियावान निष्ठावान क्रिया योगी रहे, जो श्रीमद पंचानन भट्टाचार्य के शिष्य रहे, और पंचानन भट्टाचार्य ये श्री श्री लहरी महाशय के प्रमुख शिष्यों में से एक माना गया है। तो हर क्रिया योगी ने आगे जाके जब गुरुपद स्वीकार किया या ईश्वर द्वारा उनको गुरुपद मिला और जब उन्होंने क्रिया योग का इस अध्याय को आगे प्रचलित किया ईश्वरी प्रेरणा से, तो कई कई क्रिया योगी ने 6 पाठ में, किसी ने 16 पाठ में या किसी ने 8 भाग में उसको विभक्त किया। तो आज हम बात करेंगे जो पंचानंद भट्टाचार्य के जो शिष्य हैं महेश्वर प्रसाद दुबे जी, उन्होंने ही बताया कि 6 भाग में क्रिया योग की संपूर्ण क्रिया विभक्त की जाती है। तो आने वाले ये समय में मैं 2 से लेकर 6 क्रिया का भाग को मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। तो पहली क्रिया तो बता चुका हूँ, अब आती है दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया या जिसको कहते हैं द्वितीय क्रिया, यह हृदय ग्रंथि की भेदन की क्रिया मानी गई है। इसमें वासुदेव मंत्र के साथ प्राणायाम के कौशल के हृदय को केंद्र करके कुंभक द्वारा ग्रंथि भेदन किया जाता है। श्री श्री लहरी महाशय इसको नमस्कार क्रिया भी कहते हैं। इसकी संख्या 200 प्राणायाम है। यह क्रिया बड़ी ही उपयोगी क्रिया है और जो साधक या भक्त भक्तिपूर्वक इस पूरी क्रिया को संख्या को 1 वर्ष या इससे भी कुछ अधिक काल तक यदि कर लेता है तो उसे अन्य क्रियाओं को करने की बड़ी आसानी हो जाती है और इस क्रिया से कुंभक की पर्याप्त वृद्धि होती रहती है तथा हृदय ग्रंथि पर कार्य होता है। हृदय में वासुदेव का स्थान है, अतः वासुदेव मंत्र को व्यापक रूप से करने से यह क्रिया संपन्न की जाती है। तीसरी क्रिया जिसको तृतीय क्रिया भी कहते हैं, यह द्वितीय क्रिया का विस्तारित स्वरूप है। श्री श्री लहरी महाशय ने इसे ठोठर क्रिया भी कहते थे। द्वितीय क्रिया की परिपक्वता आने के पश्चात इसको करने में और भी आसानी होती है। एक प्राणायाम में कुंभक के साथ साथ में 21 संख्या को प्रतिदिन 1-1 करके बढ़ाकर इसको भी 200 की संख्या तक किया जाता है। हृदय ग्रंथि की द्वितीय क्रिया में जो कार्य बाकी रह जाता है उसे पूर्ण करने के लिए इस तीसरी क्रिया का विधान रखा गया है। हृदय ग्रंथि भेद हो जाने पर सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ संकल्प विकल्पों की जो संख्या है वह कम हो जाती है। गीता में इसी क्रिया को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा है जिसका भावार्थ है, हे अनंत वीर अमित विक्रमी, हे सर्वात्मा, आपको आगे पीछे और चारों ओर से प्रणाम करना है, आप सर्वव्यापी और सर्वस्वरूप हैं। तृतीय इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इस क्रिया का जो क्षेत्र है वो है आज्ञा चक्र और हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। अर्थात यदि हृदय चक्र ग्रंथि का प्रमाण साधक को कुटस्थ के बिंदु भेद में जानना चाहिए तो उसको यह क्रिया जरूर करनी चाहिए। मतलब कि यदि हृदय ग्रंथि आपकी भेदन हो गई है तो आप कुटस्थ के बिंदु को, कुटस्थ के बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में विस्तार से कहा था, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप वहाँ जाके कुटस्थ के बारे में जान सकते हैं, कुटस्थ क्या है, थर्ड आई क्या है। तो मैं कह रहा था आप कुटस्थ के बिंदु को भेद करिए या जो कि कुटस्थ के नक्षत्र के ग्रह प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ गृहस्थ कुटस्थ का स्वरूप भी आपको दिखाई देगा। और योगियों के विचार से यही हृदय ग्रंथि का भेद है। चौथी क्रिया, इस क्रिया में मन बहुत ही सूक्ष्म होकर सुषुप्ना में प्रवेश करता है और सुषुप्ना में उसके प्राण क्षेत्र में स्थिति कर लेती है। इसमें अनाहत ध्वनि का अस्पष्ट रूप से उच्चारण सुन सकते हैं जो ब्रह्मांड में विस्तारित है। साधक लय की ओर अग्रसर होता है और यह क्रिया करते समय साधक का या योगी का श्वास एकदम श्वास रहित अवस्था को प्राप्त हो जाता है और मन ऊपर की ओर शून्य में अटक जाता है। इससे दूसरी और तीसरी क्रियाओं के उपलब्धि के साथ ही और अधिक परिकृष्ट हो जाने के बाद ही किया जाता है और इसमें देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। इसकी संख्या को प्राणायाम के स्वरूप में 36 की मानी गई है। चौथी क्रिया की बात कर रहा हूँ और अब आती है पंचम क्रिया। पंचम क्रिया चतुर्थ क्रिया का एक सूक्ष्मतम स्वरूप है। चतुर्थ के क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को सूक्ष्म करके इसमें और भी अधिक तन्मयता के साथ प्राण के शीर्ष भाग को उड़ान वायु के साथ जब संयुक्त करते हैं तब यह पंचम क्रिया मानी जाती है। और यह क्रिया चतुष्ट क्रिया यानी चौथी क्रिया से भी विशिष्ट है और इसमें मन और अधिक सूक्ष्म होकर स्थिर तत्व को प्राप्त होता है। इस क्रिया में ऊपर के तीन चक्रों का क्षेत्र माना गया है या क्षेत्र आता है। पंचम क्रिया की संख्या भी चौथी क्रिया की बराबरी होती है। इस क्षेत्र में भगवान वासुदेव का साकार और साक्षात दर्शन होता है। साधक को वासुदेव दर्शन जब होता है तो उसे आनंद की सीमा नहीं रहती। उसको अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी दर्पण के भांति उस प्रतिबिंब में समान रूप से होने लगता है, क्योंकि सामने उसी समय वासुदेव का मनमोहक दृश्य भी उपस्थित हो जाता है, अतः उसका ध्यान उधर खींच जाता है। उस समय साधक के अंदर गुरु भक्ति का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है और यह रूप दर्शन भी अंत में उसी निराकार जैसे लय में समाप्त हो जाता है। परंतु अत्यंत आनंददायक होने के कारण अधिकांश साधक या योगीगण उसी तरफ अधिक खींच जाते हैं और अंत में साकार के भक्ति के मार्ग को अपना लेते हैं। यद्यपि इस प्रकार का अनुभव बहुत ही विरले साधकों को भी कम काल में मिलता है और मिलता भी है, तथापि यह जब भी होता है तो इसी क्षेत्र में आपको अनुभव होता है। माहेश्वरी जी कहते हैं कि उनका यह अनुभव छठे या सातवीं क्रिया के बाद हुआ था और यदि इस काल में साधक थोड़ा एकांतवास करके अपने मन को सब ओर से हटा लेता है और स्त्री संघ से पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है यानी संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करता है तो इस क्रिया काल में साकार दर्शन का आनंद वो प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ और पंचम क्रिया में आज्ञा चक्र में स्थिति बढ़ती है और शरीर सूक्ष्म शरीर से आपका जो शरीर है आपका मन है वो सूक्ष्म शरीर में संपर्क स्थापित होता है। अंतिम क्रिया षष्टम जिसको कहते हैं, यह षष्टम क्रिया थोड़ी कठिन है। इसमें ईड़ा और पिंगला की चंचलता से मन का प्रत्याहार होता है। साधक ईड़ा पिंगला में प्रवेश करके उसके चंचल वायु पर अधिकार पाने की चेष्टा करता है। ईड़ा पिंगला का भरपूर मंथन करने पर उसमें बारंबार मन में प्रवेश करने की प्रवृत्ति संयमित हो जाती है। इस संयम से उसमें राजसी और तामसी गुणों का ह्रास होने लगता है और इसी काल में साधक को सांसारिकता से पूर्ण कार्य न करके उसमें बड़ी सहूलियत प्राप्त होती है, यानी कहीं ना कहीं संसारिकता में रहते हुए भी अपने आप को बैलेंस कर पाता है। इसमें प्रथम क्रिया का प्राणायाम 432 बार सवेरे और 432 बार रात्रि में करने का विधान है और इसमें कुछ आसानी भी होती है। इस क्रिया को मूलाधार की आसक्ति ग्रंथि का भेदन करने के लिए है। इसमें खूब मन लगाकर करने से शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करने का कौशल्य प्राप्त होता है। यद्यपि सूक्ष्म शरीर को अलग करने की एक क्रिया है, तथापि इसमें कुछ मिलती जुलती वह क्रिया जरूर है। इसकी संख्या भी 36 है। 36 बार एक कुंभक करने से बड़ी मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता होती है। इसको 15-20 बार करते करते ध्यानातीत अवस्था आती है और जो भी हो इसके पहले की क्रियाओं से यह थोड़ा बहुत कठिन है, पर कुछ लोग कुंभक के बिना ही यह विधान को करने में माहिर हो जाते हैं। खैर, एक और सप्तम क्रिया भी माहेश्वरी जी कहते हैं, यह क्रिया छठी क्रिया से थोड़ी भिन्न है। इसमें 200 तक जप करने का एक कुंभक का प्रकार है और इस षष्टम क्रिया और सप्तम क्रिया का मूलाधार ग्रंथि का भेदन करने के लिए है। इसमें छठे क्रिया के द्वारा जो कार्य होता है उसमें कुछ छूट जाता है और इससे यानी इस सात्विक क्रिया से एक पूरी क्रिया संपन्न होती है। इसमें आज्ञा चक्र में अच्छी स्थिति प्राप्त होती है और इसमें भी एक प्रकार का प्राणायाम ही है और एक ही प्राणायाम में द्वितीय प्राणायाम के बाद सारी क्रियाओं को वो आसानी से कर सकता है, परंतु इसमें आज्ञा चक्र के जप के समय पूरी तन्मयता आ जाती है जो अन्य में नहीं होती। जो भी क्रियाएं हो उसका मूल उद्देश्य चौथी से लेकर सातवीं क्रियाओं का कुटस्थ में प्रवेश कराने का है। कुटस्थ के ऊपर कोई झंझट नहीं होता। एक बार कुटस्थ में प्रवेश हो गया तो उधर फिर उस सूक्ष्म शरीर और अहंकार से स्तर पर ले जाती है और यहाँ तक भी कहा गया कि जहाँ तक मन रहता है वहीं तक यह क्रिया ही होती है। मन प्राण के साथ संयुक्त हो जाने के पर प्राण यानी उस आत्मा को कोई रुकावट नहीं आती। वह विभिन्न स्तरों को आराम से पार करता हुआ उस ब्रह्म मंडल में चला जाता है। तब उसका सारांश यही रहता है कि मन को सुषुम्ना में प्रवेश कराओ। हाँ, यदि प्रथम क्रिया में ही यह हो जाए तो अन्य क्रियाओं की कोई खास आवश्यकता नहीं होती, पर यह तभी होता है जब आप पूर्व जन्म के आपके संस्कार होते हैं। छठे और सप्तम क्रिया का मूल उद्देश्य भी अपान की जो जड़ता है उसको समाप्त करना है। यदि यह भी हो गया तो फिर कोई समस्या व्यक्ति को नहीं रहती। इन सब विवरणों पर साधकों का विभिन्न मत हो सकता है, पर दुबे जी का यही कहना है कि उनको यह सारे अनुभव प्राणायाम करते समय 1986 में हुआ था। उसी समय प्राण अपान अपना अपना स्थान छोड़कर प्राण के साथ संयुक्त हो जाता है। प्राण और अपान जब आपस में एकाकार हो जाता है प्रथम क्रिया से ही, कई कई लोगों को होता है पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा, तो चार या पांच बार ऊपर नीचे करते हुए मुश्किल से चौथी या प्राणायाम तक मन नाभि क्षेत्र से अवाक होकर प्राण और अपान के साथ एक साथ ऊपर उठता हुआ देखता है। उसके बाद एक ही झटके में मन उसके साथ संयुक्त हो जाता है और श्वास बंद हो जाता है। इसके बाद ऊपर जाने से कोई रुकावट नहीं आती और सभी स्तरों को पार करते चले जाने पर वो अपने गंतव्य स्थल पर ईश्वरी साक्षात्कार की ओर आराम से चले जाता है। महेश्वरी जी कहते हैं कि वो एक सामान्य क्रियावान निष्ठावान साधक है, पर मैं नहीं मानता, वो एक श्रेष्ठतम साधक है। इसलिए उनको यह अनुभव कहते हैं कि उनको अपने अनुभव गुरु के द्वारा और गुरु कृपा से भी प्राप्त हुआ, ऐसा उनका मानना है। गुरु कृपा ही साधना जगत में प्रधान माना गया है और मैं भी ये मानता हूँ कि जो क्रियावान या क्रियायोगी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से क्रिया करेगा उसे ऊपर दिए हुए सारे अनुभव होते हैं और उन महान गुरुओं की आशीर्वाद जरूर प्राप्त होती है। और यह कहने के लिए आवश्यक जरूर होगा, गुरु कृपा ही इन सारी क्रियाओं को उपस्थित करने में लाभदायक और आसानी से उस सारे पद को गतिशील करती है। आगे तो उस क्रिया योगी की मेहनत और गुरु कृपा का सहयोग से ही साधक अपने लक्ष्य की ओर जरूर प्राप्त करता है। अतएव क्रियावानों को यही परामर्श है कि निष्ठापूर्वक क्रिया योग का अभ्यास करें और अभ्यास में थोड़ी भी शिथिलता नहीं आ पाए, क्योंकि ये शिथिलता आती है तो सांसारिकता के कारण, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और साथ साथ खान पान में कोई विशेष प्रावधान नहीं बताया गया है। यदि फिर भी संभव हो तो क्रिया योगी को चाहे कि वो नॉनवेज मांस मछली का सेवन ना करें, शराब ना पिए, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, और यदि इससे पहले भी अभ्यास हो तो धीरे धीरे इन सारी यम नियम का पालन करते हुए सारी नकारात्मक चीज़ों को छोड़ते रहें, क्योंकि खान पान पर और ब्रह्मचर्य से पालन करने से मन स्थिर होता है और मन के स्थिर होने पर बुद्धि भी स्थिर होने लगती है। और क्योंकि यदि बुद्धि आपकी विकृत हो गई तो आपका नियंत्रण अपने शरीर और मन पर नहीं रहेगा। इसलिए आजकल धर्म पर तरह तरह पर चर्चा तो लोग एक फैशन की तरह बढ़ गया है, अखबारों में, मैगजीन में, ऑनलाइन वेबसाइटों में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पर भी आपको दिखेगी, पर खेत की बात है वो सारे लेखक और यूट्यूबर या ब्लॉगर खुद उन सिद्धांतों का पालन कभी नहीं करते। वो गुरु तो बड़े बड़े हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, पर वो खुद ईश्वरी साक्षात्कार गुरु स्वयं ना होकर पढ़ी पढ़ाई बातें और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद एक संस्था ओपन कर लेते हैं और अपनी एक आजीविका का एक साधन बना लेते हैं। मैं किसी पर मैं ब्लेम नहीं कर रहा, पर अधिकतर ऐसे गुरु लोग हैं और लोग उन योगियों को, उन बाहरी गुरुओं को देखकर विभ्रांतित हो जाते हैं और बाद में उसके पीछे अपना पूरा जीवन खपा देते हैं और ईश्वरी साक्षात्कार के पद पर ना जाकर भ्रमित हो जाते हैं, जो कि साकार और निराकार जैसी कोई भी चीज़ है भी और नहीं भी। अर्थात यदि उसका अस्तित्व है तो उसका साकार निराकार का साकार रूप भी अवश्य होगा। हो सकता है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर विशाल भी स्वरूप धारण कर सकता है, परंतु एक बात अवश्य जानना चाहिए कि साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है। शास्त्रों में दोनों ही रूपों की मान्यता है। यह दूसरी बात है कि यदि सारी सृष्टि का कोई नियंता या कोई मालिक है तो उसका एक स्वरूप साकार भी है जो कर्ता रूप में है, और उसका दूसरा स्वरूप निराकार भी है, कोई बिना आकार का नहीं रहता, उसको निराकार कहते हैं। अतएव वो अविनाशी परब्रह्म अगर अपने आप को निराकार रूप में व्यक्त कर सकता है तो साकार रूप में भी वह अपने आप को व्यक्त कर सकता है। हमारे वेदांत में परमात्मा को अविनाशी और निराकार बताया गया है। ब्रह्मलोक में और उसके ऊपर ब्रह्म मंडल में उसका एक बोध मात्र रहता है, उस चैतन्य बोध का कोई रूप नहीं रहता, और रहता भी है तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने अभ्यास से उस रूप को जान सकता है। उस अरूप को आप तभी बोध कर सकते हैं जब आप उस अरूप यानी कारण रूप आत्मा को आप जान जाए और उस अव्यक्त को आप जान जाए। इसलिए कहा जाता है उसमें जान जाने पर सभी का बोध प्राप्त हो जाता है और जड़ता समाप्त हो जाती है, कोई भी इंद्रिय नहीं रहती। इसलिए उसका वर्णन करना भी, उस पर ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। श्री श्री लहरी महाशयी जी ने वेदांत की टीका करते हुए कहा कि 10 ब्रह्मांडों मिलकर आकाश में एक अणु बनते हैं और 100 आकाश के अणु मिलकर वायु का एक अणु बनते हैं। इसी प्रकार करोड़ों ब्रह्मांडों मिलकर पृथ्वी का एक अणु का निर्माण करता है। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि वह अणु क्या है, अर्थात वह होते होते हुए भी कुछ नहीं है। और आज का विज्ञान पृथ्वी का एक अणु और परमाणु को लेकर ही परेशान है, और उसे करोड़ों भाग की आप कल्पना ही कर नहीं पाएंगे, वो तो क्या कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए साकार का रूप नारायण का जो दिखाई पड़ता है वो भी दिव्य दृष्टि से हमारी सूक्ष्म शरीर में हम देख पाते हैं, यानी उस स्तर पर पहुँचने के बाद क्रिया योग का अभ्यास करते हुए, और उस रूप का वर्णन भी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। वह प्रकाश का बना हुआ मायामय रूप केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए परमात्मा धारण करता है, और उसको देखते देखते साधक अपने आप में लीन होते हुए उस निराकार परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। जो उसे देखता है वह किसी दूसरे को देख नहीं सकता, वह किसी और को समझ नहीं सकता, वो अपने आप में खुमारी में रहता है। वह जो भी है वो उसको अव्यक्त को व्यक्त नहीं कर पाता। यदि आप आत्मा के साथ संयुक्त हो जाए तो वह निराकार आत्मा ही उस आत्मा यानी उस परमात्मा का साक्षात स्वरूप को प्रकट करती है। जो कि ये बातें बहुत हाई एंड और फंडा लगती हैं, लेकिन ये अनुभव की बातें हैं। आप इस स्थूल शरीर में इंद्रिय बोध के साथ उस तत्व को परमात्मा को नहीं समझ सकते। अतएव साधना करके स्वयं ये पता करें कि यह साकार क्या है, निराकार क्या है, और उसको पुस्तक पढ़कर और उस पर बहस करके बातें करना बेकार है। और इसीलिए क्रिया योगी को यही एकमात्र उपदेश दिया जाता है, आप अधिक से अधिक क्रिया योग की साधना कीजिए, जिससे आप इन सारे अनुभवों को जो मैंने अपने 5-6 एपिसोड में दुबी जी के अनुभव को आपको बताए हैं उनके पुस्तक से, ठीक है, तो आप जान पाओगे कि इसका क्या मतलब है। जहाँ तक अद्वैत का सवाल है, हमारे विचार से कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि सब एक ही परब्रह्म की ओर लेके जाते हैं। विधान अलग अलग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, लेकिन अंतिम परिचय तो ईश्वर ही है। जब आपको परमात्मा का दर्शन हो जाता है तब वह द्वैत यानी साधक और परमात्मा दो रहते हैं, और वह द्वैत भी निकल जाता है आगे जाके जब आप अद्वैत की स्थिति में पैर रखते हैं। परंतु वही साधक जब परमात्मा को देखते हुए उसमें लय हो जाता है तब वह अद्वैत भाव से भी युक्त हो जाता है। यही साधक जब परमात्मा का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से जगत के कार्यों को करता है तब वह द्वैताद्वैत भाव से भी युक्त हो जाता है। अतः द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत ये सब साधक के विभिन्न स्तर को या भावों को अवस्थाओं के नाम हैं। उसके अंतर को केवल साधक ही समझ सकता है, और कुछ लोग पुस्तक पढ़कर ही शास्त्रों को बिना जाने ही साधना करने का कुछ चेष्टा करते हैं, और छोटे मोटे अनुभव को समझ न होने पर उसकी अविश्वास कर लेते हैं या एक विभ्रम सा हो जाता है, क्योंकि गुरु तो होता है नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है जो केवल पुस्तक या ज्ञान को लेकर ही दूसरों को ज्ञान देते हैं। और इसलिए संस्कृत में एक श्लोक के बताया गया है, यथा खरश्चन भारवाही भरश्च व्रेता न चननश्च तदेव शास्त्राणि बहुधेत्या सारम न जानन्ति खखच्च बहितः। जैसे गधे की पीठ पर चंदा का काष्ठ का लड्ढा लगा दिया जाए तो वो उस भार को ही अनुभव करता है, चंदन की खुशबू से वह अवगत नहीं होता। उसी प्रकार अनेक लोग शास्त्र को पढ़ते परंतु उसको सार को वो समझ नहीं पाते और केवल गधों की तरह उस बोझ को ढोते रहते हैं। और इसलिए जब साहित्यकार को या लोगों को विज्ञान नहीं समझ आया, उनको यदि भौतिक शास्त्र की पुस्तक दे दी जाए तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वह तो केवल शास्त्र को ही प्राण विज्ञान समझते हैं, उसे वह कैसे समझ पाएंगे। अतएव किसी भी चीज पर विश्वास या अविश्वास करना व्यक्त करने से पहले उसको समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, अतः साधन करना चाहिए, तभी आपका संशय समाप्त होगा। और इस समय कुछ लोग जो समाज में अग्रणी हैं, वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए मनु के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाते हैं। और दुबे जी कहते हैं कि मेरा एक प्रश्न उनसे है, क्या वे मनु समित को समझ पाए हैं या पागल की तरह केवल प्रलाप कर रहे हैं। उन्हें तो पहले यह बात समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि उस पुस्तक को पढ़ने का अधिकार उनको है भी या नहीं। ऐसे लोगों पर हम सभी लोगों को तरस आता है, इसलिए शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में अपनी टीका में यह लिखा है, ब्रह्म संबंधित प्रश्न वही कर सकता है जो साधन चतुष्टय अर्थात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को प्राप्त करता है, वही उसको सही अर्थ में समझ सकता है। और समाधि का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही ब्रह्म विषयक प्रश्न कर सकता है या उसको समझा सकता है। यदि समाधि का ज्ञाता है तो वह खुद जान जाएगा कि समाधि क्या है, उसकी स्वरूप क्या है, उसका प्रकार क्या है। अतएव इस प्रकार से उन्होंने साधना करने पर अधिक जोर दिया है। पुस्तक पढ़कर ब्रह्म पर चर्चा करना और शास्त्रों को बिना समझे उस पर अंत मंतव्य स्पष्ट करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इसलिए क्रियावानों को चाहिए कि इन विचारों में ना पढ़ के केवल साधना करें। और यही शुभकामनाओं के साथ अधिक बातें ना करके मैं अपना यह एपिसोड क्रिया योग पर यही समाप्तिकरण करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको कुछ इनसाइट प्राप्त हुई होगी, और यदि अच्छा लगे तो अपने भाइयों बहनों में इस ज्ञान के प्रचार को अवश्य प्रचारित कीजिए। मैं कोई योगी, सन्यासी या समाधिस्थ पुरुष नहीं हूँ, पर एक छोटा सा प्रयास है कि भारतीय शास्त्रों की इन पवित्र व्याख्यानों को टेक्नोलॉजी के द्वारा आप लोगों में मैं प्रसारित कर सकूँ। इसी के साथ यहाँ मैं अपना एपिसोड समाप्त करता हूँ। जय हिंद।